सिद्धिभ्यः
ॐ
नमः सिद्धिभ्यः
ॐ
नमः सिद्धिभ्यः यार्ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरन्नुमीरिदे मत्तु यार्दिव्यध्वनियो लोकहितवमाडिदे मूरुलोकदल्लि यार्कीर्तिव्याप्तवागिदे ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಯಾರು ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕೀ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ತಿರ್ಯಂಚ ಗತಿ ಔರ್ ಮನುಷ್ಯ ಗತಿ ಕಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಸೆ ಗರ್ಭಜನ್ ತೀನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾ ಹೋತಾ ಹೈ ಜರಾಯುಜ್ अंडज और पोत इनमें मनुष्यों के रहने के निवास स्थान कितने हैं पांच कर्म भूमि में तीन प्रकार के मनुष्य रहते हैं किस भूमि में कर्म भूमि में तीन प्रकार म्लेच्छ खंड के मनुष्य आर्य खंड के मनुष्य जो भूचर कहलाते हैं और विजयार्ध पर्वत में निवास करने वाले जो खेचर मनुष्य विद्याधर कहलाते हैं वे तीन प्रकार के और दो प्रकार के एक प्रकार के मनुष्य तो उनमें से कुभोग भूमियों में रहते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं द्वीप लवण समुद्र और धातकी खंड केवल दो ही समुद्र में कुभोग भूमियाँ हैं अन्यत्र कहीं भी कुभोग भूमि नहीं है असंख्यात समुद्र हैं लेकिन उन असंख्यात समुद्रों में से दो ही ऐसे समुद्र हैं जहाँ पर कुमानुष पाए जाते हैं कुभोग भूमियाँ हैं और द्वीपों में सुभोग भूमियाँ हैं द्वीपों में कुभोग भूमियाँ होती ही नहीं केवल सुभोग भूमि ही होती तीन प्रकार से हुआ करती हैं मध्यम सुभोग भूमि उत्तम सुभोग भूमि मध्यम सुभोग भूमि और जगन्य सुभोग भूमि जगन्य सुभोग भूमि सबसे ज़्यादा है मध्यम सुभोग भूमि कम है उत्तम सुभोग भूमि कम है जगन्य सुभोग भूमि बहुत हैं कितने हैं असंख्यात हैं ढाई द्वीप के बाहर असंख्यात द्वीपों में जो भूमियाँ हैं वो सभी जगन्य भोग भूमि हैं और वहाँ पर कौन पाए जाते हैं केवल संगी पंचेंद्री तिर्यंच ही हैं अन्य कोई भी जीव नहीं है एकेंद्री जीव अवश्य होते हैं पृथ्वी का एक जलकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, निगोदी जीव भी पाए जाते हैं। ऐसे समूर्छन जीव वहाँ पर अवश्य हैं। एकेंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री तक समूर्छन भी होते हैं, ये समझाया गया है। एकेंद्री, द्विंद्री, तीनेंद्री, एकेंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चतुरेंद्री, पंचेंद्री, ये सभी, इन सबका अस्तित्व केवल कर्मभूमि में है और आर्यखंड में है। कर्मभूमि कहाँ कहाँ है? तो ढाई द्वीप के बाहर तो कर्मभूमि नहीं है, असंख्यात द्वीप समुद्र की अपेक्षा से सभी भोग भूमि है, लेकिन अंतिम एक द्वीप है जो स्वयंभू रमन समुद्र है, और स्वयंभू रमन द्वीप है उससे पहले। तो आधा द्वीप और पूरा समुद्र, ये सब कर्म भूमि के अंतर्गत समझना चाहिए। आधा द्वीप जैसे मानुषोत्तर पर्वत राउंड आकार से है ना, राउंड आकार से, वैसे ही नागेंद्र पर्वत है किस द्वीप में, स्वयंभू रमन द्वीप में नागेंद्र पर्वत है। इस नागेंद्र पर्वत के परभाग में, बाहरी भाग में, अंतरंग में तो आधा भोगभूमि की व्यवस्था है इस तरफ, और परभाग में कर्मभूमि की व्यवस्था है। वहाँ पर केवल तिर्यंच ही रहते हैं, मनुष्य तो होते नहीं। संघी पंचेंद्री तिर्यंच, एकेंद्री, द्विंद्री, तीनेंद्री, विकलत्र आदि भी जीव वहाँ पर पाए जाते हैं, परंतु बीच में विकलत्र जीव पाए नहीं जाते। एकेंद्री तो पाए जाते हैं, लेकिन एक विकलत्र जीव पाए नहीं जाते असंख्यात द्वीपों में। तो यहाँ अपन को मनुष्य और तिर्यंच गति की अपेक्षा से जो गर्भ जन्म होता है और तीन प्रकार का है, वे तीन प्रकार का जन्म कैसे कैसे, कितने गुण, कौन से गुण स्थान में होता है, पर्याप्तक अवस्था में उनके कितने गुण स्थान, निवृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में कितने गुण स्थान, ये समझना है। लब्धि अपर्याप्तक का यहाँ चर्चा नहीं है क्योंकि ये गर्भ जन्म वाला है। लब्धि अपर्याप्तक जीव संगी पंचेंद्रिय अवश्य होते हैं, लेकिन वो सभी समूर्छन होते हैं। समूर्छन की चर्चा पिछले चार्ट में तो हो चुकी है, अभी गर्भ जन्म की चर्चा है। तो मोटे अक्षरों में कर्म भूमिज मनुष्य आर्यखंडज खेचर विद्याधर व भूचर मनुष्य। विद्याधर को और भूचरों को एक साथ लिया है। पर्याप्त अवस्था में इनके गुणस्थान कितने हैं? पहले से 14वें तक हैं, क्योंकि वहाँ से भी मोक्ष हो सकता है। कहाँ से? विजयार्थ पर्वत से। वहाँ पर तो निरंतर मोक्ष है, वहाँ पर काल परिवर्तन नहीं है, सदा चतुर्थ काल जैसा ही वातावरण रहता है, इसलिए निरंतर मोक्ष है। आज भी भरत क्षेत्र से, मतलब जो सबसे ज़्यादा समीप यदि कोई मोक्ष जाने का, जीवों के मोक्ष जाने का स्थान है, तो विजयार्ध पर्वत है। हम लोगों के लिए बहुत पास है, वहाँ भी नहीं जा पा रहे हैं विज्ञानी, उसकी भी खोज नहीं हो पा रही है। विदेह क्षेत्र तो बहुत दूर है, लेकिन विजयार्ध इतना पास है, वहाँ पर भी केवल ज्ञानी हैं, तीर्थंकरों के समान केवल ज्ञान को धारण करने वाले केवल ज्ञानी मुनि महाराज विद्याधर श्रेणियों में भी है, पर यहाँ से जाने का कोई भी उपाय नहीं हो पा रहा है। विद्या साधन कर लेंगे, विद्या सिद्ध करेंगे, आकाशगामिनी विद्या, तो जा सकते हैं। कहाँ? विजयार्थ पर्वत पर। पर आकाशगामिनी विद्या भी पंचम काल में सिद्ध नहीं होती। क्या हो सकती है आकाशगामिनी विद्या? किसी को प्राप्त हो जाए तो पता लगा करके आ सकता है। विजयार्थ पर्वत है, केवल ज्ञानी हैं, हम देख करके आए हैं, आकाशगामिनी विद्या के माध्यम से हम वहाँ पर दर्शन करके आए हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन पंचम काल में विद्याओं की सिद्धि नहीं होती। क्यों नहीं होती? यहाँ पर पाप अधिक है। पाप युग है ये। पाप के कारण से यहाँ विद्या सिद्ध नहीं हो सकती। रिद्धियां जो प्रकट होती हैं वो उत्तम सहन वालों को ही प्रकट होती है। विद्या ऐसे रिद्धि, चारण रिद्धि जो आकाश में चलते हैं, मुनियों को प्राप्त होता है। तपस्या के परिणाम स्वरूप विद्या रिद्धि प्रकट होती है, किंतु ऐसी रिद्धि आज पंचम काल में जैसे नहीं है वैसी विद्या भी नहीं है। विद्या को प्राप्त करने लायक, सिद्ध करने लायक ऐसी कोई विशुद्धि भी आज नहीं बन पाती। वो क्षमता अपने मनोबल, वचन बल, काय बल में नहीं है, इसलिए कि कोई भी मनुष्य विद्या सिद्ध नहीं कर सक रहा है। सभी मंत्र तंत्र सिद्ध करने में लगे रहते हैं। हजारों करोड़ों लाखों की संख्या में लोग मंत्र जप करते हैं, वो सिद्ध करूं, ये सिद्ध करूं, परंतु कोई भी विद्या सिद्ध नहीं हो पाती। लेकिन सम्यक दर्शन तो सिद्ध हो सकता है, सम्यक ज्ञान सिद्ध हो सकता है, ये परमार्थ विद्या सिद्ध हो सकती है, लेकिन भौतिक विद्या सिद्ध नहीं हो सकती। विद्याधर विजयार्ध में रहने वाले होते हैं, वहाँ पर आज भी पहले गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक रहने वाले मनुष्य मिलते हैं, किंतु यहाँ अपने क्षेत्र में कौन मनुष्य मिलते हैं? कितने गुणस्थान वाले? पहले से लेकर 7वें गुणस्थान तक के मनुष्य मिल सकते। स्त्री पर्याय में कितने गुणस्थान हैं? 5 गुणस्थान, 1 से 5। पुरुष पर्याय में 1 से 7, 8वां भी नहीं है आज। 8वें गुणस्थान के प्रवेश के लिए देखो ऊपर के 3 सनन में से कोई एक सनन चाहिए, तीसरा भी चल जाएगा 8वें गुणस्थान में जाने के लिए। तो तीसरा यदि है और 8वें में गया तो 11वें तक तो वो जाएगा ही, 11वें तक जाएगा, 12वें में नहीं जाएगा। 12वें में जाने के लिए कौन सा सोनन चाहिए? पहला नंबर का चाहिए, क्योंकि 12वें में जाएगा तो अंतर्मुहूर्त के भीतर केवल ज्ञानी अरहंत पद को पा लेगा, केवल ज्ञानी बन जाएगा, किंतु वो सोनन तो है ही नहीं। दूसरा सोनन और तीसरा सोनन, इन दो सोननों के माध्यम से हम 11वें गुणस्थान तक जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। दूसरा और तीसरा, चौथे सोनन से, पांचवें सोनन से और छठे सोनन से, चौथा, पांचवा, छठा, इन तीनों से हम 7 गुणस्थान तक जा सकते हैं। 7वें गुणस्थान तक ही ये सोनन तीनों, चौथे, पांचवें, छठे, 7वें गुणस्थान तक ही 7 देते हैं, आगे नहीं। आगे बंधन आ गया, आगे हम 7 नहीं दे सकते, हमारी कैपेसिटी खत्म हो गई, ये कहते हैं ये तीनों सनन। बहुत महत्वपूर्ण है सनन की चर्चा। सनन से ही सारे प्रश्न, कई प्रश्न हल होते हैं। कई लोगों को ये प्रश्न होता है पंचम काल में मोक्ष क्यों नहीं, उनको ये पता नहीं कि सनन कितने होते हैं, होना चाहिए कहते हैं वो। आज भी हम भी मनुष्य हैं, वो भी चतुर्थ काल के भी मनुष्य थे, होना तो चाहिए मोक्ष, ऐसा नहीं। शरीर पंचम काल का हीन शरीर होता है, हीन सहनन वाला होता है, इसलिए मोक्ष नहीं होता। यहाँ कर्मभूमिज मनुष्य, आर्यखंडज, खेचर, विद्याधर व भूचर मनुष्य, इन सबको पहले गुणस्थान से चौदह गुणस्थान तक गुणस्थान होते। अच्छा, दूसरी बात यह है कि विद्याधर पर्वतों में रहने वाले, वहाँ पर जन्म लेने वाले मनुष्यों को आज कितने सहनन हैं? हाँ, छह मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ मोक्ष होता है इसलिए पहला नंबर का एक ही होता है, ऐसा नहीं। भोग भूमि में कौन सा सहनन होता है? त्रिरंचियों को और मनुष्यों को, दोनों को कौन सा सहनन होता है? पहला, प्रथम नंबर का एक ही सहनन होता है, चाहे त्रिरंच हो, चाहे त्रिरंचनी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे मनुष्यनी हो, सबको पहला सहनन ही होता है, एक ही सहनन है वहां। और हो के क्या फायदा? पहला सहनन तो है, हो के क्या फायदा? गुणस्थान कितने होंगे अधिक से अधिक उनको? उनको चार गुणस्थान होंगे। जो पहला सहनन होकर के भी चार ही गुणस्थान है, देखो मोक्ष नहीं हो रहा है। तो वज्रषभ नाराज सहनन प्राप्त होने वालों को नियम से मोक्ष होता है, ऐसा नियम नहीं है। कर्मभूमि में भी नहीं है ऐसा नियम, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मोक्ष जाना जाने वाला जीव प्रथम सहननधारी तो होता ही है, लेकिन धर्म पुरुषार्थवादी होता है, वो पुरुषार्थवादी होता है। वो ऐसा नहीं कहता कि जब मोक्ष हो जाएगा, काल आने पर हो जाएगा, जब होना है हो जाएगा, अभी तो मुझे वज्रषभ नाराज सनन मिला है, इससे कुछ नहीं करना चाहिए अब मुझे, ऐसा कह करके चुपचाप बैठेगा क्या? उस सहनन का दुरुपयोग करेगा क्या? दुरुपयोग करेगा तो नीचे जाएगा, सदुपयोग करेगा तो मोक्ष भी जा सकता है और सर्वार्थ सिद्धि भी जा सकता है। वज्रषभ नाराज सनन धारी क्या निगोद नहीं जा सकता? क्या एकेंद्री नहीं बन सकता? क्या विकलित त्रय में नहीं जा सकता? क्या असंगी पंचेंद्री नहीं बन सकता? सब पर्यायों में जा सकता है, सभी पर्यायों में जा सकता है। देखो, मनुष्य गति के सारे मार्ग खुले यदि हैं तो पहले सनन वाले को है, सब जगह जा सकता है वो। ऐसा कौन सा स्थान है जहां नहीं जा सकता? ऐसे कौन सी योनि है जहां पर वो नहीं जा सकता? प्रथम सननधारी सब जगह जा सकता है, लेकिन अपन सब जगह नहीं जा सकते। देवगति में कितनी स्थान है, कितनी योनियां हैं, कितने उपवाद शैया हैं, सब जगह जा सकते अपन? कहां तक जा सकते? आज ज्यादा से ज्यादा 16 स्वर्ग तक जाते हैं। नवे ग्रहवे का योनि स्थान हमारे लिए व्यर्थ हो गया ना इस सनन के कारण। नव अनुदिशों के, नव विमानों के उपवाद शैयाएं हमारे लिए व्यर्थ हैं। सर्वार सिद्धि के पांच अनुत्तर विमान के सब उपवाद शैयाएं हमारे लिए कोई काम के नहीं है, लेकिन वज्रषभ नाराज सननधारी को, वो पहले स्वर्ग में भी जा सकता है, सर्वार सिद्धि में भी जा सकता है, पहले स्वर्ग में भी जा सकता है, बीच के स्वर्गों में भी जा सकता है, भवनत्रिक में भी जा सकता है, एकेंद्री बन सकता है, निगोद जा सकता है, सातवें नरक जा सकता है, पहले नरक जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता बोलो? तो सारे योनि स्थानों का मालिक यदि कोई है तो वज्रषभ नाराज सननधारी मनुष्य हैं। हाँ, छूट सकता? क्या छूट सकता है? हाँ, जब तक आप जीवित हैं तब तक काम देगा। दूसरे भव में बांध करके जाएंगे, यहां से नया कर्म बांधेंगे, नहीं, छूटने का सवाल नहीं। देखो वज्र ऋषभ नारा सहनन, ये एक कर्म भी है और शरीर भी है। कर्म के कारण शरीर मिलता है, ये ध्यान में रखो। कर्म के कारण शरीर मिलता है, शरीर ऐसा ही मिल गया क्या फुकट में? नहीं, आपने ऐसे शुभ कर्म किए, शुभ भाव किए, जिसके माध्यम से अभी इस जन्म में वज्र ऋषभ नारा सहनन कर्म को बांध लिया। ये पुण्य कर्म बंध जाता है पहले, फिर वहां पर जब आप उत्पन्न होते हैं तब वह आपको वज्र ऋषभ नारा सनन शरीर को निर्माण करने में सहयोग देता है, और उस शरीर आपका वज्र ऋषभ वज्र जैसी काया बन जाता है। ये साथ कैसे चलेगा? शरीर साथ चलेगा क्या? सोहनन साथ नहीं चलता, सोहनन नामक कर्म साथ चल सकता है। हाँ, जैसे आप मनुष्य हैं, इस समय आपका सोहनन वज्र ऋषभ नारा सोहनन नहीं है, किंतु ऐसे शुभ भाव करेंगे, मंद कषाय करेंगे, तो वज्र ऋषभ नारा सोहनन का भी बंद हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, पर इसका बंद करने के लिए आप पहले से चौथे गुण स्थान तक इन चार गुण स्थानों में रहना चाहिए तो बंद होता है। आगे के गुण स्थानों में इसका बंद नहीं है, है? देवायु का बंद होता है, उसके आगे तो देवायु का बंद होता है, इसलिए देव गति में जाने के लिए कोई भी सनन की जरूरत नहीं होती है, इसलिए उसके आगे देवायु का बंद होता है। इस कारण पहले गुण स्थान में, दूसरे, तीसरे और चौथे, इन चार गुण स्थानों में इस कर्म को हम बांध सकते हैं और शुभ परिणामों से ये बंधता है, अशुभ परिणामों से नहीं बंधता। क्योंकि छह प्रकार के सहनन में से पहला सहनन एक ही पुण्य प्रकृति है, बाकी पांच पाप प्रकृति है, पाप कर्म है। वो प्रकृति मतलब कर्म, पांच पाप कर्म हैं और एक पुण्य कर्म है। तो पुण्य कर्म के बंध के लिए अशुभ चलेगा क्या? अशुभ परिणाम, अशुभ परिणामों से अशुभ कर्म का आश्रय, शुभ परिणामों से शुभ कर्म का आश्रय होता है। तो वज्र ऋषभ नाराज सनन को बांधने के लिए विशेष रूप से मंद कषायी, शुभ परिणाम, शुभ लेशा होना आवश्यक है। या अशुभ लेशा भी हो तो अति मंद कषाय होना भी भावों की शुभता कहलाती है। ये विषयांतर हो गया, उनका कौन सा सनन था ये पूछो ना। ये विषयांतर हो गया, इन प्रश्नों को बाद में पूछो। सहनन नाम कर्म को हम बांधते हैं, पहले सहनन को बांधने के लिए कौन से परिणाम चाहिए? शुभ परिणाम चाहिए, क्योंकि वो पुण्य प्रकृति है। बाकी पर सहननों को बांधने के लिए अशुभ परिणाम क्या है? अशुभ परिणाम चलेंगे, उसमें भी मंद कषाय तो चाहिए, उसमें भी तरतमता है, उस तरतमता के हिसाब से ही वो कर्म का आश्रय और बंद होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि अपन हीन सनन वाले हैं, चौथे, पांचवे या छठे वाले हैं, अपन वज्र ऋषभ नारा सनन को बांध सकते हैं क्या? नहीं बांध सकते, पहले कर्म बंधेगा। और जब आप यदि त्रेंच गति में जाएंगे या मनुष्य गति में जाएंगे, वहां सहनन यहां जो बांधा है वो प्राप्त हो सकता है। देखो आपको भोग भूमि जाना है, पल्लोपम की आयु आपको बंधी है, भोग भूमि में जाना है। कर्म भूमि में तो जा नहीं सकोगे पल्लोपम की आयु को लेकर, तो भोग भूमि में जाना निश्चित हो गया। तो वहां जाने के लिए आपको यहाँ पर किस गुणस्थान में रहकर वज्र ऋषभ नारा सनन का बंद करना पड़ेगा? हाँ, चौथे में भी बांध सकते, पहले में, दूसरे में, तीसरे में भी बांध सकते। ये बंद गया तो आप भोगभूमि में जा करके वज्र ऋषभ नारा सनन, वहां जाने के बाद उदय आएगा, फल देगा वो। उदय आया, उदय आते ही आपके शरीर को वज्रमय बनाने लगा, वो कर्म बनाता है आपको। शरीर जो देता है ना वो कर्म दे रहा है, हड्डियों की रचना जो कर रहा है ना वज्र काया के समान, वज्र के समान वह, हाँ कर्म आपको शरीर को दे रहा है। तो शरीर मिलने पर, शरीर तो यहीं छोड़ के जाते हैं हम, वज्र का हो या नहीं भी हो, शरीर को तो छोड़ करके जाते हैं। आगे आपको वज्र ऋषभ नारा सनन चाहिए तो यहाँ पर शुभ भावों से उस प्रकार के कर्म को बांधना पड़ता है। इसको बांधने के बाद वहां जब शरीर धारण करेंगे तो वहां पर अपने को वज्र काया निर्माण कराएगा। वज्र ऋषभ नारा सनन बांधा है तो वज्र के समान मिलेगा, छठा सनन बांधा है तो छठे सनन की उत्पत्ति वहां होगी, शरीर बनेगा। इस प्रकार होता है, शरीर को मतलब सनन को ले जा नहीं सकते, सनन नाम कर्म को ले जा सकते। कर्म में और शरीर में फर्क है, शरीर के निर्माण में कर्म कारण बनता है, कारण बनता है। तो क्या बता रहे थे, भोगभूमि में देखो स्त्री पर्याय में भी पहला सनन, त्रिरंच पर्याय में भी पहला सनन, त्रिरंचनी पर्याय में भी पहला सनन, पुरुष पर्याय में तो है ही, सौनन पहला होने के बाद भी इनको ज्यादा से ज्यादा दूसरे स्वर्ग तक होने की कैपेसिटी है। मनुष्य हो तो सर्वार्थ सिद्धि तक, अब बोलो भोगभूमि के जीव वज्रषभ नारा सनन वाले हैं, सर्वार्थ सिद्धि तक क्यों नहीं जा रहे हैं? हाँ? संयम धारण नहीं कर सकते? यदि संयम धारण कर लेते तो सर्वार्थ सिद्धि तक भी जा सकते। संयम धारण करके श्रेणी चढ़कर वो क्रांति कर रहा है कि यहां से चलो तुम। वज्रषभ नारा सनन, सनन वज्रषभ नारा सनन है, सर्वार्थ सिद्धि नहीं जा सकते। तो भोग भूमि के जीवों को सभी कितने बहुत सारी योनि स्थान उनके व्यर्थ हो गए, क्योंकि एक ही गति में जाना है। और वज्रषभ नारा सनन, और इधर कर्म भूमि वाले मनुष्य को सारे योनि स्थान में पहुंच सकते, सारे मार्ग खुले हैं, और वो भी वज्रषभ नारा सनन। लेकिन सम्यक दृष्टि होगा तो या तो पहले स्वर्ग में या तो दूसरे स्वर्ग में। अधिक आयु को बांधेगा तो दूसरा स्वर्ग, कम आयु को बांधेगा तो पहला स्वर्ग। ये सम्यक्त्व के कारण से स्वर्ग में जा रहा है, किंतु भवनत्रिक में जाने के लिए सम्यक्त्व हो तो नहीं चलेगा। भवनत्रिक में जाने के लिए सम्यक्त्व हो तो नहीं चलेगा। सम्यक दृष्टि जीव कोई भी किसी भी गति का भवनत्रिक में जाता भी नहीं है। वहां जाने के बाद सम्यक दृष्टि बन सकता है, ये बात अलग है, परंतु जाते समय सम्यक दृष्टि रहेगा तो वैमानिकों में जाता है, भवनत्रिक में नहीं जाता। तो भोग भूमि में भी जो तिरेंच हैं और मनुष्य हैं वो सम्यक दृष्टि भी होते हैं और मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। जो मिथ्यात्व के साथ मरण करते हैं उनके मरण गुण स्थान दो हैं। कौन कौन से? पहला वाला और दूसरा वाला, दो ही गुण स्थान में उनका मरण हो सकता है। और इन गुण स्थानों में मरण हो गया तो नियम से भवनत्रिक में ही जाता है वो भूमि का जीव। और यदि सम्यक दृष्टि होता है तो नियम से पहले स्वर्ग में या तो दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होता है। और वहां जा रहा है तो वह भोगभूमि का जीव अपने मंद कषाय से, शुभ परिणामों से, शुभ भावों से कोई भी सनन का बंद नहीं करेगा। भोगभूमि के जीवों को कोई भी सनन का बंद नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगले भाव में जाकर हमको औदारिक शरीर तो पाना नहीं है, वैकृत शरीर पाना है। तो वैकृत शरीर पाने के लिए स्वनन नाम कर्म जरूरी नहीं है, लेकिन कर्म भूमि का जीव कर्म भूमि में उत्पन्न होना चाहता है, या भोग भूमि में उत्पन्न होना चाहता है, या त्रिरंच गति में उत्पन्न होना चाहता है, द्विन्द्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के पर्यायों में जन्म लेना चाहता है, तो यहां से सहनन नाम कर्म का बंद किए बिना वहां नहीं जा सकता। द्विन्द्रिय बनना चाहो तो छठा सहनन को बांधना पड़ेगा, तीन इंद्रिय बनना चाहो, मूंगी बनना चाहो तो भी छठा सहनन को बांधकर जाना पड़ेगा। जो आगामी पर्याय में जाकर जो मनुष्य मूंगी बनना चाहता है, चाहता तो नहीं है, बनने वाला है, उनको कौन सा सहनन का बंध होगा? छठा सहनन। और मूंगी पर्याय में जाने वाला मनुष्य किस गुण स्थान में रहता है? पहले गुण स्थान में। और त्रिरंच आयु को बांधेगा तो ये त्रिरंच आयु को बंध किस गुण स्थान में रहते हुए करता है? पहले में या तो दूसरे में। त्रिरंच आयु का बंध पहले में भी हो सकता है, दूसरे में भी हो सकता है, तीसरे में होता है क्या? सम्यक तो रहित है ना वो जीव। हाँ, आयु कर्म का बंध दूसरे में भी हो सकता है, किंतु क्यों होता है? देखो, परिणाम सम्यक दृष्टि जीव है, उपशम सम्यक दृष्टि कोई मनुष्य है, और वो गिर रहा है सम्यक तो से, चौथे गुणस्थान से गिर रहा है। जब गिरता है चार कषाय में से एक कषाय कारण बनती है, अनंत अनुबंधी कषाय में से एक कषाय कारण बनती है, क्रोध मान माया लोभ। जो दूसरे गुणस्थान में जाकर त्रिरंच आयु को बांधने वाला है, किस कषाय के साथ दूसरे गुणस्थान में जाएगा? विचार करो, त्रिरंच आयु को बांधने के लिए कौन सी कषाय चाहिए? माया कषाय चाहिए। तो अनंत अनुबंधी माया कषाय के साथ जिसका सम्यक दर्शन विघात को प्राप्त हुआ है, वो दूसरे गुणस्थान में उतर जाता है और वहां जाकर त्रिरंच आयु को बांधना प्रारंभ कर देता है। सब व्यवस्थाएं, सब सिद्धांत व्यवस्थित हैं, किंतु नरकायु को बंद नहीं कर सकता दूसरे गुणस्थान में, क्योंकि नरकायु का बंद क्रोध से होता है, नरकायु का बंद लोभ से भी हो सकता है, नरकायु का बंद किसी भी कषाय में हो, कषाय के साथ हो जाए, बंद करेगा तो पहले गुणस्थान में ही बंद करेगा। तो आज तक अनादिकाल से जो भी नरक गए हैं नरकायु को बंद कर, किस गुणस्थान में रहे होंगे वो सभी? पहला गुणस्थान। ये नियम है, ये जीव सिद्धांत है। जीव को नरकायु का बंद करना है तो पहले गुणस्थान में आना ही पड़ेगा, और पहला गुणस्थान हमारे साथ कब से है? अनादि का हमारा मूल गुणस्थान है वो। ऊपर के तो बाद में प्राप्त हुए हैं, मूल गुणस्थान हमारा पहला है। जो निगोद में जीव रहते हैं ना, वे जो आज तक बाहर नहीं आए हैं वही वही हैं, उनका अनादिकाल से कौन सा गुणस्थान रहा होगा? क्या बदल गया है कभी? नहीं, पहले गुणस्थान की ही अनुभूति वो करते रहे हैं। देखो कैसा कैसा है जीव सिद्धांत। थोड़ी सी बात याद रखना, आयु बंद के संबंध में नरकायु का बंद केवल पहले गुणस्थान में ही होता है, ऊपर के गुणस्थानों में नहीं। त्रिरंच आयु का बंध पहले और दूसरे दो गुणस्थानों में हो सकता है, ऊपर के गुणस्थानों में नहीं। मनुष्यायु का बंध पहले, दूसरे और चौथे इन तीन गुणस्थानों में हो सकता है, अन्य गुणस्थानों में नहीं, कहीं भी नहीं। तीन में से एक में रहना पड़ेगा मनुष्यायु को बांधना चाहते हैं तो, पहला, दूसरा और चौथा। मनुष्य बनने वाला इन गुणस्थानों में रह करके ही आगामी आयु का बंध करता है, मनुष्यायु का। देवायु का बंध करना चाहता है जीव तो एक गुणस्थान छोड़ दो, तीसरा, पहले से लेकर, तीसरा छोड़ दो, पहले से लेकर सातवें गुणस्थान तक बंद कर सकता है देवायु का। सातवें गुणस्थान तक देवायु का बंद कर सकता है। मुनि महाराज देवायु का बंद करते हैं, पंचम गुणस्थान वर्ती देवायु का ही बंद करते हैं, ये नियम है। और अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वर्ती जीव भी देवायु का ही बंद करता है, मनुष्य हो तो। मनुष्य के लिए बता रहे, चौथा गुणस्थान वर्ती मनुष्य, सुन रहे ना, चौथा गुणस्थान वर्ती मनुष्य, पंचम गुणस्थान वर्ती मनुष्य और सातवां गुणस्थान वर्त, छठा सातवां गुणस्थान वर्ती मनुष्य किस आयु का बंद करता है नियम से? देवायु का ही बंद करता है। ये क्या बोले? नहीं जो, हाँ हाँ समझ गए, जो मनुष्य चौथे से लेकर सातवें तक रहेगा वो अकेला देवायु का ही बंद करता है, अन्य आयु का बंद नहीं करता। अब जो मनुष्य पहले गुणस्थान में ही है तो देवायु का भी बंद कर सकता है, नरकायु का भी बंद कर सकता है, त्रिंचायु का भी बंद कर सकता है और मनुष्यायु का भी बंद कर सकता है। पहले गुणस्थान में रहने वाला चारों आयुओं का बंद कर सकता है, पहले गुणस्थान में। दूसरे गुणस्थान में रहने वाला तीन का बंद कर सकता है, एक का नहीं करेगा। नहीं नहीं नरकायु का बंद नहीं करेगा, दूसरे में नरकायु का बंद नहीं करेगा। देखो विशेष बात है, दूसरे गुणस्थान में नरकायु का बंद नहीं कर सकता, ये नियम हो गया। हो गया क्या? नहीं। फिर उसका मरण भी यदि होगा तो पहले में ही होगा, दूसरे में मरण नहीं हो सकता। क्या बोला, क्या बोला हमने? हाँ, नरकायु का बंद कहाँ होता है? पहले में ही। दूसरे में होता है क्या? नहीं होता है। तो उसका मरण भी दूसरे गुणस्थान में नहीं होगा। जिस गुणस्थान में आयु का बंद किया है उसी गुणस्थान में जाकर मरण होगा। जहां से तुमने अपराध किया है, जहां से जीव अपराध करता है उसी गुणस्थान में जाकर मरण करता है। अब देखो, त्रिरंच आयु का बंध दो गुणस्थानों में होता है, होता है क्या? नहीं होता है। तो दूसरे गुणस्थान में भी त्रिरंच आयु का बंध हो सकता है, पहले गुणस्थान में भी त्रिरंच आयु का बंध हो सकता है। किसी ने ऐसा कर लिया, किस गुणस्थान में रहकर? पहले में या दूसरे में रह करके त्रिरंच आयु का बंध किया। अब मरण कितने गुणस्थानों में हो सकता है? इसको चौथे में नहीं होगा क्या? मरण आयु कर्म का, त्रिरंच आयु कर्म का बंध किया, मरण करने के लिए उस जीव को कितने गुणस्थान बन सकते हैं? थोड़ा सा और सोचना है? पहले दूसरे में तो मरण कर सकता ही है, पहले दूसरे गुण स्थान में मरण कर सकता ही है, क्या चौथे में मरण नहीं कर सकता? हाँ हाँ, सम्यक तो धारण करेगा तो क्या नहीं कर सकता? हाँ देखो, किसी ने पहले या दूसरे में बंद कर लिया, किस आयु का? 3 आयु का। बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, और ऐसा सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया जो क्षायिक है, जो क्षायिक है, ऐसा सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो सम्यक तो के साथ मरेगा क्या? नीचे आएगा, वो सम्यक तो के साथ ही मरण करेगा। क्षायिक है वो तो नीचे नहीं आ सकता, क्षायिक के साथ मरण करेगा, क्षायिक सम्यक तो के साथ, और मरण तो चौथे गुण स्थान में हो गया फिर। हाँ चौथे के साथ भी हो सकता है, परंतु ऐसा यदि हुआ तो वह त्रिरंच तो बनेगा ही बनेगा, तो कहाँ का त्रिरंच बनेगा? भोग भूमि का त्रिरंच बनेगा। सब व्यवस्था है, आने वाले चाहिए पहले से व्यवस्था बनी हुई है उस रूट पर चलने वाले चाहिए। देखो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, वहां जगन्य भोग भूमिया हैं, क्या वहां क्षायिक सम्यक दृष्टि त्रिरंच नहीं है? हाँ? है कि नहीं है? तो फिर वो कहाँ, उन्होंने अपने पूर्व भव में वहां के जो त्रिरंच है, क्षायिक सम्यक दृष्टि त्रिरंच, पूर्व भव में किस गुणस्थान में रहकर उन्होंने त्रिरंच आयु को बांधा होगा? पहले या दूसरे में? और फिर मरण किस गुणस्थान में किया होगा? चौथे में मरण किया है नियम से, क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि तो चौथे ही मरण करता है, पहले में आता है क्या? वो क्षोपशम सम्यक दृष्टि हो तो सम्यक तो छूट सकता है, क्षायोपशम सम्यक तो, पर तो वो क्षायिक है ना, क्षायिक है, क्षायिक सम्यक तो के साथ मरण किया और भोग भूमि का त्रिरंच बना। हाँ ये नियम है कि वह कर्म भूमि में उत्पन्न हो ही नहीं सकता, इसलिए कर्म भूमि का कोई भी त्रिरंच क्षायिक सम्यक दृष्टि मिलने वाला नहीं है। हाँ बिल्कुल, नहीं मनुष्य में, हाँ वैसे मनुष्य गति का भी सामान्यतः नियम है, किंतु अस्तित्व क्षायिक सम्यक तो का अस्तित्व मनुष्य गति में तो है, किंतु कर्म भूमि के त्रिरंचों में क्षायिक सम्यक दृष्टि त्रिरंच कोई भी नहीं है, एक भी नहीं, एक भी नहीं है क्या? अच्छा बंद किया, हाँ हाँ बनता है ना, हाँ वो भोग नियम से भोग भूमि में ही जाएगा वो, हाँ और जगन्य भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि, किसी एक में जा सकता है वो, ऐसा भी नियम नहीं है कि उत्तम भोग भूमि में ही जाता है। हाँ आयु के अनुसार वह तीनों भोग भूमि में जा सकता है, ये तो है ही, किंतु हम ये बता रहे हैं कर्म भूमि के त्रिरंचों में क्षायिक सम्यक दृष्टि त्रिरंच एक भी नहीं है। क्यों नहीं है? देखो ये नियम है, क्या नियम है कि क्षायिक सम्यक्त्व के साथ जो मरण कर रहा है वो कर्म भूमि में पैदा नहीं होता, ये सिद्धांत है। क्षायिक सम्यक दृष्टि मनुष्य है, वह चौथे गुणस्थान में मरण कर, सम्यक्त्व के साथ मरण कर, क्या नहीं बनता? कर्म भूमि का मनुष्य, मनुष्य 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 नहीं बनता, ये नियम है। कर्म भूमि में सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होता, मनुष्य से मनुष्य, त्रिरंच से मनुष्य, त्रिरंच से त्रिरंच, ऐसा उत्पन्न नहीं होता। पर ये त्रिरंच से त्रिरंच नहीं बन रहा है, कौन? एक मनुष्य एक क्षायक सम्यक दृष्टि बना और वह त्रिरंच गति में जा रहा है, तो प्राप्ति की अपेक्षा से क्षायक सम्यक दर्शन मनुष्य गति में ही होता है, प्राप्ति की अपेक्षा से क्षायिक सम्यक दर्शन किस गति में उत्पन्न होता है यह प्रश्न है। हाँ ये तो मालूम है ना, ये पहला। और क्षायोपशम सम्यक दर्शन कितने गतियों के जीवों को प्राप्त हो सकता है? चारों गति के जीवों को प्राप्त हो सकता है, यानी पंच संगी पंचेंद्री चारों गति के। उपशम सम्यक दर्शन कितने गतियों के जीवों को प्राप्त हो सकता है? चारों गति। अब रहा क्षायिक, क्षायिक सम्यक दर्शन सिर्फ मनुष्य को ही प्राप्त होता है, तो मनुष्य यह क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो नियम से भूभूमि पहले से आयु का बंद किया हो त्रिरंच या मनुष्य का तो भूभूमि में जाएगा, अगर नहीं बांधा हो तो नियम से देवगति में जाएगा, देवायु को बंद करके देवगति में जाएगा। हम ये कह रहे हैं क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव कहां कहां नहीं है ये बोलो। कर्म भूमि के संगी पंचेंद्री त्रिरंचों में एक भी क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव पाया नहीं जाता। असंख्यात भोग भूमियों में संगी पंचेंद्री त्रिरंच हैं, उनमें क्षायिक सम्यक दृष्टि त्रिरंच हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ का ले गया हुआ वहां रहता है। भवनत्रिक में क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव क्यों नहीं है? हाँ, कोई भी मनुष्य जाएगा तो मिथ्यात्व के साथ जाता है, और जिस मनुष्य को क्षायिक सम्यक दर्शन हो और देवगति में जाना हो तो कौन सा देव बनेगा? कल्पवासी ही बनेगा। देखो, ऐसा मनुष्य जिसने मिथ्यात्व के काल में पहले गुणस्थान में रहकर देवायु का बंद किया, हो सकता है कि नहीं? ऐसा बंद किया, बंद किया। अब मान लो उसको 10,000 वर्ष जगन्य आयु का बंद हुआ है, देवगति में कम से कम 10,000 वर्ष की आयु होती और अधिक से अधिक 33 सागर की आयु, तो भवनत्रिक में 10,000 के जो जगन्य आयु है उसको बांध लिया। बाद में उसने देवायु को बांध लिया और 10,000 आयु को बांध लिया, सम्यक दर्शन प्राप्त किया, वो भी क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया। और स्वर्गों में 10,000 वर्ष की आयु नहीं है, हाँ वो उत्कर्षण करेगा, उस आयु को बढ़ाएगा। यदि क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया तो वो 10,000 की आयु पल्योपम तक जाएगी, पल्योपम के अंदर गई तो फिर वो वैमानिकों में ही जन्म लेगा, ये टल जाएगा, भवनत्रिक में जाना टल जाएगा। इतने भाव शुद्ध हो जाएंगे क्षायिक सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के बाद। उत्कर्षण भी हो सकता है, अपकर्षण भी हो सकता है, और ये निसर्ग नियम है। यदि हमारे पास क्षायिक सम्यक दर्शन आ गया तो फिर भवनत्रिक से हमें बचा देता है, भवनत्रिक में जाने नहीं देगा। अच्छा, ये बात हो गई कहां कहां क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं है, ये हम पूछ रहे थे और बता रहे थे कि कर्म भूमि की त्रिरंचों में एक भी क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव नहीं है, भवनत्रिक भवनवासी व्यंतरवासी ज्योतिषों में एक भी क्षायिक सम्यक दृष्टि त्रिरंच नहीं है, मन देव नहीं है, एक भी क्षायिक सम्यक दृष्टि देव नहीं है, वैमानिकों में है। अब कुभोग भूमि में बोलो नहीं है, कुभोग भूमि में एक भी क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव नहीं है, क्योंकि कुभोग भूमि में जाने वाला जीव मिथ्यात्व के साथ पहले गुणस्थान में या दूसरे गुणस्थान में मरण करके वहां जाता है, इसलिए क्षायिक वो एक स्थान कुभोग भूमि, छानों कुभोग भूमि में एक भी क्षायिक सम्यक दृष्टि मनुष्य या त्रिरंच नहीं है। और कहाँ नहीं है? हाँ ठीक ठीक है ठीक, नरक की अपेक्षा से देख लेते हैं। पहले नरक में तो क्षायक सम्यक दृष्टि जीव हैं। नहीं नहीं नहीं, पहले नरक में ही क्षायक सम्यक दृष्टि जीव हैं, दूसरे आदि नरकों में, नीचे के नरकों में कहीं भी क्षायक सम्यक दृष्टि जीव नहीं हैं। हाँ, सम्यक दृष्टि मरण करके अधिक से अधिक कौन से नरक तक जाता है? पहले नरक। इस सिद्धांत के अनुसार, नियम के अनुसार, क्षायक सम्यक दृष्टि जीव नीचे के नरकों में नहीं हैं। क्षायोपशम सम्यक दृष्टि जीव मरण करके तीसरे गुण नरक तक जा सकता है, लेकिन जाते समय सम्यक्त को छोड़ेगा, वहां जाने के बाद पुनः प्राप्त कर लेगा पर्याप्त अवस्था में, परंतु जाते समय तो मिथ्यात्व के साथ ही जाएगा। सम्यक्त के साथ जाने वाला जीव पहले में ही जाएगा। अब ये सोचो, क्षायोपशम सम्यक दृष्टि, कौन सा बता रहा हूं? क्षायोपशायिक नहीं, क्षायोपशम सम्यक दृष्टि जीव सम्यक्त के साथ चतुर्थ गुण स्थान में मर सकता है क्या, नरक जाने वाला? हाँ, सम्यक्त के साथ नहीं मरेगा वो। हाँ, परंतु एक अपवाद है कि वह मरण कर सकता है। कौन मरण करता है? कृतकृत्य वेदक क्षायोपशम सम्यक दृष्टि ये मरण कर सकता है। यानी कृतकृत वेदक कौन? अपने क्षायोपशम सम्यक्तु को क्षायिक बनाने की प्रक्रिया में लगा हुआ है, उसको कृतकृत्य वेदक बोलते हैं, जिन्होंने अनंतानुबंधी आदि चार कषायों को क्षय कर दिया और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, इन कर्मों को भी नष्ट कर दिया है। अब रह गया है एक सम्यक प्रकृति को क्षय करना। ये सम्यक तो उसे गिरेगा नहीं, रहेगा क्षोभशम सम्यक दृष्टि, किंतु सम्यक तो उसे ये गिरने वाला नहीं, क्योंकि एक सम्यक प्रकृति का ही उदय है, अनंत अनुबंधी का उदय नहीं है। क्षय हो चुका है तो उसका उदय आए बिना पहले में तो गिरता नहीं, तो क्षय ही हो चुका है तो वो गिरने वाला नहीं, कहलाएगा क्षौक्षम सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, कृतकृत्य। तो पहले नरक में अपर्याप्तक अवस्था में दो सम्यक तो घटित किया है, क्षायिक सम्यक तो को और वेदक सम्यक तो को, वेदक यानी कृतकृत्य वेदक अपर्याप्तक अवस्था में। यहां से जो ले जाते समय सम्यक तो रहता है ना, वो अपर्याप्तक अवस्था में वहां रहता ही है। अगर यहां सम्यक तो यहां से ले नहीं गए हैं और वहां पर जाने के बाद पर्याप्त पूर्ण करने के बाद कोई सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, तो पर्याप्त अवस्था में क्षौक्षम सम्यक तो भी हो सकता है, प्राप्त कर लिया तो उपशम सम्यक दर्शन भी हो सकता है, प्रथमोपशम। हाँ, क्षायिक हो जाएगा वो, कृतकृत्य वेदक वाला अपर्याप्तक अवस्था में कृतकृत्य रहेगा और पर्याप्तक अवस्था में क्षायिक कहलाएगा। हाँ, चालू रहेगी वो। हाँ बिल्कुल, का चालू रहेगी वो, वहाँ चालू रहेगी ऐसे ही, जब तक ये चर्चा है चालू रहेगी। कृष्ण यहाँ, कृष्ण जो है क्षौक्षम सम्यक दृष्टि थे, मरण के काल में उनका सम्यक तो छूट गया था। हाँ छूट गया था। ये तो बताया था एक बार, जा सकता है किंतु सम्यक दृष्टि रहकर नहीं, मिथ्या दृष्टि रहकर जा सकता है, लेकिन ऐसा जाने के लिए ही मिथ्या दृष्टि बन करके हम बैठ जाएं तो कोई गारंटी भी नहीं है, वो लॉटरी जैसा है, जाए तो जाए नहीं तो नहीं। लेकिन सम्यक्तु के साथ तो ये गारंटी है, पहले तो हम देवगति में जन्म लेंगे और वहां से तत्काल विदेह क्षेत्र में पहुंच सकते हैं, भगवान का दर्शन हो जाएगा। आपको भगवान के दर्शन से मतलब है क्या, मोक्ष जाने से मतलब है? दर्शन से ही मतलब है तो अंतर्मुहूर्त बाद ही आपको भगवान का दर्शन हो सकता है, और यदि मोक्ष जाने से मतलब है तो यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ से मरण करना पड़ेगा, फिर मनुष्य बनना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि रहेंगे तो गारंटी, वहाँ पर भी सम्यक तो नाश नहीं करेंगे, सम्यक तो के साथ मरण करना पड़ेगा। सम्यक तो के साथ मरण किया तो नियम से मनुष्य बनेगा, मनुष्य बनकर मोक्ष जा सकता है। इस तरह से रास्ता है, एक बार बताया था इसको। ठीक, आगे क्या बोल रहे थे हम? देखो, स्थान निकल गए, भौनत्रिक में क्षायक सम्यक दृष्टि नहीं होते, नरकों में पहले नरक के नीचे क्षायक सम्यक दृष्टि नहीं होते, और कहाँ, कुभोभूमियों में क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं होते, और कर्मभूमि के स्त्रियों में, कर्मभूमि के स्त्रियों में क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव नहीं होते, कर्मभूमि के स्त्रियों में नहीं होते। कौन है? हाँ हाँ, वो तो भूभूमि में भी नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, हाँ, स्त्री पर्याय में कहीं भी क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव नहीं है। देवगति में देवियों में कोई भी क्षायिक सम्यक दृष्टि देवी नहीं है, मनुष्य गति में कोई भी मनुष्यनी स्त्री क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं है। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव केवल दो ही पर्याय में पाए जाते हैं, पुरुष पर्याय और नपुंसक पर्याय। बोलो, दुर्लभ। हाँ, सम्यक तो कितना दुर्लभ हो गया स्त्री पर्याय को, क्षायिक सम्यक दर्शन, और नपुंसक पर्याय में सुलभ हो गया। हाँ, देखो ना, ये क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त होता है मनुष्य गति, मनुष्य को, वो भी वज्रषभ नाराज सननधारी मनुष्य को। प्राप्ति तो पहले सनन वाले मनुष्य को ही है पुरुष पर्याय में, और उसको ले जा रहा है नरक गति में भी, ले जा रहा है त्रिरंच गति में भी। त्रिरंच गति में ले जा रहा है तो त्रिरंचनी नहीं बन सकता, त्रिरंच ही बन सकता है। तो भोगभूमि का जो, भोगभूमि के जो त्रिरंच हैं वो क्षायिक सम्यक दृष्टि हैं, किंतु त्रिरंचनी में एक भी त्रिरंचनी क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं है, भले ही पहला सनन है वहां। देवगति में भी देवियां, 16 स्वर्ग तक की जो देवियां हैं उनका उपपाद तो पहला स्वर्ग और दूसरा स्वर्ग है, उत्पत्ति के बाद वो 16वें स्वर्ग तक जाती, ले जाते हैं देव लोग आकर के उनके आयु के अनुरूप। जिनकी ज्यादा आयु रहती है उतना पुण्य का फल उनको वहां ऊपर का मिलता है। तो देव गति में भी देवियों में एक भी स्त्री पर्याय में क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं है। तीर्थंकर की माता भी क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं है। देखो सुनो, तीर्थंकर, जिसको तीर्थंकर बालक को जन्म देती है, इसी माँ जिनकी तीन लोक में ख्याति है, उनको क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ आना भाग्य नहीं है, मनुष्य गति से जाकर के तीर्थंकर की माँ बने। स्त्री पर्याय में जाता ही नहीं, सम्यक दृष्टि जीव स्त्री पर्याय में नहीं जाता, दो ही पर्याय में जाता है, नपुंसक पर्याय और मनुष्य पुरुष पर्याय, दो ही पर्याय में जाता है। तीर्थंकर की माता जन्म लेते समय किस गुणस्थान के साथ जन्मी? हैं? हाँ, चौथे गुणस्थान के साथ जन्म लेने की व्यवस्था ही नहीं है, सिद्धांत ही नहीं है, तो किसके साथ जन्म? पहले गुणस्थान के साथ। फिर सम्यक दर्शन कब हुआ? जन्म के बाद कब हुआ? कितने साल बाद हुआ? 8 साल अंतर्मुहूर्त पहले तो होगा ही नहीं, 8 साल अंतर्मुहूर्त बाद ही होगा। देखो, तीर्थंकर को जन्म देने वाली माँ भी जन्मते समय मिथ्यात्व गुणस्थान से जन्मती, और नरक जाने वाला जीव, नरक में जाने वाला जीव क्षायिक सम्यक दर्शन लेकर के क्षायिक सम्यक्त्व के साथ जन्म रहा है। कितना गिफ्ट मिला इसको, नस नपुसक पर्याय को। विचारने लायक है ये। इसलिए स्त्री पर्याय क्षायिक सम्यक दर्शन की अपेक्षा से स्त्री पर्याय नपुसक पर्याय से नीचे हो गया। पर नपुसक पर्याय में क्यों जन्मा? तो इसलिए जन्मा, वो तो मजबूरी थी, क्योंकि नरक में एक ही वेद वाले होते हैं, नपुसक वेद वाले जीव होते। पुरुष वेद वाले होते हैं क्या? अगर नरक में पुरुष वेद भी होता और नपुसक वेद भी होता तब किस पर्याय में जन्म लेता? पुरुष पर्याय में जन्म लेता, लेकिन ऐसा है नहीं, है नहीं, इसलिए मजबूरी है नपुसक पर्याय में जन्म लेना, क्योंकि पहले से नरकायु का बंध किया है। फिर क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने का अवसर मिल गया, प्राप्त किया, अब वो नष्ट तो होगा नहीं, अब नरक गति से तो बच नहीं सकते, नरकायु का बंध किया है, नरक गति का बंध किया है, नरक में तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन वहां वेद एक ही है, नपुसक वेद। इस वेद में मजबूरी के साथ जन्म लेना पड़ रहा है। रत्नकंड श्रावकाचार में ये भी कहा है, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यंक नपुसक स्त्रीत्वानी दुष्कुल विकृतालपायुर दरिद्रताम च व्रजंती न अपि अव्रति कहा। अव्रति कहा, अव्रति सम्यक दृष्टि, किस गुणस्थान वर्ती? चौथा गुणस्थान वर्ती, समय हो गया, चौथा गुणस्थान वर्ती अव्रति सम्यक दृष्टि जीव, अव्रति सम्यक दृष्टि जीव नपुसक पर्याय में बिल्कुल नहीं जाता, ऐसा नियम है। फिर ये कैसा हो गया कि क्षायिक सम्यक दृष्टि नरक गति में जाकर नपुसक वेद में उत्पन्न हो गया? ये प्रश्न आपको उत्पन्न हो सकता है, है? नहीं 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 नहीं, नपुसक पर्याय में जन्म लेता ही नहीं, ऐसा जो नियम है वो किस अपेक्षा से लगाओगे? हाँ, आयु, किसी भी आयु का बंध नहीं किया है और क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो नपुसक पर्याय में बिल्कुल नहीं जाएगा, नपुसक पर्याय का बंध नहीं करेगा। हाँ, ये ऐसा है, नहीं तो ये प्रश्न करेंगे, नरक में तो जाकर के नपुसक बन रहा है और रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में ऐसा लिखा है कि नपुसक पर्याय में उत्पन्न नहीं होता, तो वो उत्पन्न हो रहा है तो क्यों हो रहा है? मिथ्यात्व की अवस्था में उन्होंने नपुसक पर्याय को बंद किया है, नरकायु को बंद किया है, तो नपुसक पर्याय का ही बंद होता रहता है, और बंद करते समय, नरकायु का बंद करते समय बंद होता रहता है। बंद के बाद क्या हम सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते? बन सकते हैं, सम्यक दृष्टि बन गए और इसके बाद मरण हुआ तो हमको तो वहीं जाना पड़ेगा, ये मजबूरी है नपुसक पर्याय में उत्पन्न होना। इस दृष्टि से वहां क्षायिक सम्यक्तों का अस्तित्व है, मजबूरी, मजबूरी की अपेक्षा से है वो, लेकिन बंद की अपेक्षा से तो त्रिरंच, इसमें स्त्री पर्याय और नपुसक पर्याय दोनों पर्यायों का बंद नहीं करता सम्यक दृष्टि जीव। सम्यक्त्व रहेगा तो ही पुरुष बनेगा, जो स्त्री पर्याय में या नपुंसक पर्याय में उत्पन्न नहीं होना चाहते हैं, तो क्या गारंटी लेना चाहिए? सम्यक्तु की गारंटी लेना चाहिए। तो इन दो पर्यायों में हम जा नहीं सकते, ये गारंटी है आयुबंध के पहले। वो भी हाँ, आयुबंध के पहले यानी त्रिभाग में आयुबंध होता है, तीन भाग करो। यदि 60 साल के हैं तो 40 साल से पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करो। हाँ, बंद होने के बाद प्राप्त करोगे तो फिर जाना पड़ेगा। हाँ, मार्ग हैं, निकलने के भी मार्ग हैं तो फंसने के भी मार्ग हैं, सब व्यवस्था है। टाइम हो गया जिनवानी। देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो मा अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद रहे।